राष्ट्र कृष्ण भावना अमृत संघ इस काम के द्वारा और भारतीय मूल के सारे बहन वासियों के द्वारा आयोजित चार दिन के भागवत कथा के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। कल हमने भागवत की महिमा की। जिस वक्त भागवत सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पे जा रहे थे तो स्वर्ग से इंद्र अमृत का कलश लेकर आया और कहा, सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत परीक्षण को पिला दीजिए तो सांप के काटने से बच जाएगा। और ये भागवत का अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आप भागवत के अमृत पान के अधिकारी नहीं हैं। आप भागवत का मूल छुपाना चाहते हैं स्वर्ग के अमृत से। अरे स्वर्ग का अमृत चेतन भक्वा स्वर्ग लोकम विशालम तीन पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग में जाएगा अमृत पिएगा फिर भी मृत्यु लोक में आएगा। और ये जो भागवत अमृत है ये तो धर्मामृत है, ये तो भगवत प्राप्ति कराने वाला है। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम उठाओ अपना ये मत का तुम्हारा ये तुम्हारा कवच अमृत का ले जाओ। तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। बहुत बड़ी बात है कि भागवत की महिमा इतनी है कि स्वर्ग का अमृत उसके सामने कुछ भी नहीं है कुछ। और सात दिन में भागवत के श्रवण से परीक्षित महाराज को भगवत धाम की प्राप्ति को देखकर ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। सारे वेद शाम पर एक तरफ तारागण में डाले, एक तरफ भागवत को रखा तो भागवत का पलड़ा भाला। तो सारे शास्त्रों का सार, शास्त्र सारे वेद से आए, वेद कल्प वृक्ष उसका पका हुआ फल भागवत। और वो रसमय है और वो पका हुआ फल गिरा ही नहीं है। वो ऊपर से अगर ये सामने दिखे जो चित्र है बैकग्राउंड में इसको देखेंगे तो ये भागवत स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी को दे रहे हैं चार श्लोकों के रूप में। चतुर श्लोकी भागवत चार इसलिए श्लोक रखे, वेदों का सम्मान रखा क्योंकि वेद भी आ रहे हैं तो चार श्लोकों में ही भागवत को पूर्ण कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने भक्ति के अवतार शिष्य नारद को इस चार श्लोकों की भागवत का उपदेश दिया। नारद ने यही उपदेश व्यास देव को दिया। आप देखेंगे यह व्यास देव खड़ा है नारद के सामने और कल इसकी कथा भी हुई थी। और व्यास देव ने इस भागवत को सुखदेव को सिखाया। आज की कथा में हम ये चर्चा करेंगे आपके साथ कि सुखदेव ने भागवत कैसे सीखी। और सुखदेव जब भागवत सुना रहे थे तो उस वक्त सूत गोस्वामी सामने आके बैठे थे उस सत्र में और सूत को बुला के पास में बिठा के सुखदेव ने भागवत का अध्ययन कराया। और आगे कलयुग में सूत गोस्वामी ने इस भागवत को परीक्षित महाराज को बताया और फिर इस परंपरागत ये भागवत गुरु शिष्य की परंपरा में। और श्री प्रभुपाद जी तो एक दिन अपने बहुत अंतरंग शिष्य के संग मायापुर में उसका सेवा कर रहे थे तो प्रभुपाद जी कहने लगे थे, मेरे को भगवान के धाम के अच्छे आने की इच्छा नहीं थी
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नहीं जाओ। बोला कलयुग में जाके क्या करूंगा। बोला भागवत को विश्व व्यापक भाषा में अनुवादित करो, ये आपका विशेष कार्य है। और तब प्रभुपाद जी कहते मैं भगवान के इस आदेश से आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ और श्री प्रभुपाद की जीवन का सबसे ज्यादा समय भागवत को विश्व व्यापक अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने में लगा। उन्होंने इस भागवत को विश्व व्यापक कर दिया अंग्रेजी भाषा में, एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ लिखा। फिर श्लोक के ऊपर कितने पूर्वज आचार्य, 5-7 आचार्यों की टीकाओं को लिखा। और इस भागवत के संदेश से, शिक्षा से विश्व में शांति, मानवता का उद्धार और प्रेम भक्ति का उत्थान हुआ है, हम देख रहे हैं, देखने में आ रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो भागवत ऐसा अद्भुत, ये भगवान का रूप है, वांगमय रूप का मतलब वाणी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। अब आपको एक उदाहरण से बताते हैं। कल हमने कथा को पहले स्कंद में 19 अध्यायों में श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत बताने वाला कैसा होता है, सुनने वाले कैसे होते हैं। एक बताने वाला पहले था सूत गोस्वामी, सुनने वाले ऋषि थे, फिर सुनाने वाला नारद था, सुनने वाला व्यास देव था, और दोनों भगवान के अवतार थे। और भागवत की महिमा में तो ये लिखा है कि विष्णु जी ने कहा कि मुझे सृष्टि का पालन करना है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा। तब कहा गया भागवत का पाठ किया करो। भगवान विष्णु पाठ करते हैं 15 दिन, लक्ष्मी सुनती है, लक्ष्मी 1 महीना पाठ करती है, तब भगवान विष्णु सुनते हैं। तब शंकर जी ने कहा मुझे प्रलय का मुश्किल काम है, मैं कैसे उसको पूरा करूंगा। बोला भागवत का पाठ करना चाहिए। तो भगवान शंकर भागवत के आचार्य है, और एक तो कथा कौशिक की संहिता में मिलती है कि वो जगह जिसका नाम अमरनाथ है, वो अमरनाथ ग्रह का नाम भी इसलिए है कि वहां शंकर जी ने भागवत की अमर कथा पार्वती को सुनाई। और वहीं पड़ा हुआ एक तोते का अंडा जिसमें से सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, उन्होंने वो भागवत वहां शंकर जी से भी सुनी। तो शायद आज भी शंकर जी भागवत का निरंतर समय समय के ऊपर पाठ करते रहते। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए जब पूछा तो उनको भी ये कहा गया कि आप भागवत का पाठ करो। तो भागवत का श्रवण वर्णन तीनों जो प्रथम देव हैं इस सृष्टि के, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भागवत का पाठ करते हैं। सब ऋषि भागवत सुन रहे हैं, और फिर इस धरती पे आने वाली भागवत के लिए 12 अध्यायों में भागवत सुनने वाले की महिमा परिषद का वर्णन है। कल बताया था आपको 3 माताएं, बड़ी महा भागवत माताएं, जब ऐसी माताएं धार्मिक होकर बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाती हैं, तब उनके घर में कोई ऐसा होनहार बच्चा पैदा होता है जो भगवान का अवतार करा सकता है। भागवत भगवान का अवतार है, वो परीक्षक के लिए हुआ है। और कुंती महारानी की प्रार्थना के बाद कथा ऐसे शुरू होती है कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैंने राज के लिए इतना बड़ा महाभारी युद्ध करा दिया, कितने वीर मारे गए, कितने माताओं के बच्चे वीर गति को प्राप्त हुए, कितनी पत्नियों के पति और कितनी बहनों के भाई, ये पाप में कैसे ढूंढ। व्यास देव ने सिखाया नहीं, धर्म का युद्ध था, आपके ऊपर कोई इसका पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं रहे थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैसे भी भगवान महिमा हमेशा भक्तों को देना चाहते हैं, कहा कि चलो भीष्म देव के पास। उस वक्त भीष्म देव सर सैया के ऊपर कुरुक्षेत्र में प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की। ये 14 जनवरी आएगी, ये उत्तरायण कहलाती है, यहाँ से 6 महीना उत्तरायण होती है। तो उत्तरायण में प्राण त्यागना सदगति होती है। दक्षिणायन में नहीं किया जाता, योगी लोग अपने प्राण को रोक के रखते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, पांच पांडव, भौम्य आदि ऋषि, ये सब भीष्म देव के वहाँ आए कुरुक्षेत्र। और उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि सत्य लोक में पता लगा, तप लोक में, जन लोक में सारे ऋषि वहां से नीचे उतर के आने लगे। और भीष्म पितामह के चारों ओर अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, गौतम, कणाद, ये सब ऋषि आके बैठ गए। परशुराम भगवान अपने शिष्यों के साथ आए, और फिर साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांच पांडवों के साथ और ऋषियों के संग आए। भीष्म पितामह ने अभी जैसे स्थिति थी समय के अनुसार समाज सबका स्वागत किया और पूछा कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण पांडवों के पीछे थे, और तो युधिष्ठिर को देख के बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर महाराज को देख के भीष्म कहते कि मैं आज अपने पिता को दिए हुए वचन से मुक्त हो गया। मैंने मेरे पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर का राज सुरक्षित हाथों में नहीं होगा मैं रक्षा करूंगा। आज हस्तिनापुर का मुकुट धर्मराज के माथे के ऊपर देख के मैं संतुष्ट हो गया, और ये अब धर्म की रक्षा करेगा, अब मैं प्राण त्याग करता। और फिर युधिष्ठिर को देख के कहते हैं, युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, भगवान श्री कृष्ण आपके भाई, मित्र, सखा, बंधु, सारथी, सब कुछ। कभी पाप आपने किया नहीं, आपने किसी को शत्रु समझा नहीं, क्योंकि इतने सारे कष्ट आपको जीवन में आए, इतने सारे रिवर्सल आपके जीवन में आए, कितना आपने कष्ट सहा है। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोला। तब स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर ये काल बड़ा बलवान है, समय जब बदलता है कुछ पता नहीं लगता है। काल बहुत बलवान है, कभी तारा राज की रानी होती है और कभी धोबियानी बनती है। हरिश्चंद्र महाराज की पत्नी एक दिन राज की रानी है, कभी द्रौपदी पांच पांडवों की पटरानी होती है और कभी सहनी बनके विराट की पत्नी के बाल बनाती है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी बादल होता है, कभी बरसात होती है। ये काल बड़ा बलवान होता है, ये काल किसी को कहाँ बिठाए, किसी को कहाँ। और ये कहकर काल ने ये सब किया, और फिर भीष्म पितामह से उंगली उठा के कृष्ण की ओर इशारा करके कहा, ये काल इसके इशारे के ऊपर काम करता है। इसका अर्थ ये है, जो कुछ तुम्हारे से घटा है, हुआ है, वो इसकी इच्छा से हुआ है। काल भगवान के अधीन होता है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, कालो अस्मि मैं काल हूं। लोक क्षय प्रवृत्त हो, इस लोक को समाप्त कर देता हूं, ये मेरा काल का स्वरूप है। और भगवत गीता में तो आश्चर्य ये है कि विश्व रूप के साथ भगवान ने अर्जुन को काल रूप दिखाया है, और काल रूप के अंदर महाभारत युद्ध का भविष्य दिखाया है कि युद्ध में कौन कौन मरेगा, कौन कौन बचेगा। तो वो भगवान का जो काल रूप है, जब भीष्म पितामह कहते हैं, इसलिए युधिष्ठिर ये सब कृष्ण की इच्छा से हुआ है, आप प्रजा का पालन करो। तो भीष्म पितामह की शिक्षा ग्रहण करके युधिष्ठिर महाराज राज करने के लिए तैयार हुए। तो किसको श्रेय भगवान ने दिलाया, एक अपने महान भक्त भीष्म को, जो 12 महाजनों में से एक महाजन है। उस वक्त भीष्म पितामह समय को देख रहे थे, प्राण त्यागने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, पूछ लो पितामह से, जो सीखना है सीख लो, अब ये जाने वाले हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, राज धर्म कैसे होता है, राजा को कैसे धर्म धर्म चला, वर्ण आश्रम धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। तो भीष्म पितामह ने बहुत विस्तार से राज धर्म, नारी धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इसके ऊपर प्रवचन किया है, जो सारे संतों ने सुना है। और फिर जब समय आया, तब भीष्म पितामह ने सब जगह से अपनी वृत्ति को हटाकर हाथ जोड़ के कृष्ण को कहा कि अब ये एकादशी का दिन था और 11 श्लोकों में ही भीष्म पितामह की स्तुति है। ये बड़ी अद्भुत भीष्म की स्तुति है। ये अद्भुत ब्रह्मचारी धरती के ऊपर चला है, 400 साल तक जीवित रहा है। कितनी 4-4, 5-5, 6-6 पीढ़ियां द्वापर की देखी भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूं तब तक आप मुस्कुराते मेरे सामने खड़े रहे। और इस एक भाव को लेकर कितना सुंदर सूरदास ने गाया है, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले बंसी भट हो जमुना का तट हो सांवरा निकट हो। तो ये भीष्म पितामह का भाव है कि श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं और तो एक शब्द कहा है कि मेरी बुद्धि मेरी मति जो मैंने संसार में कहीं भी कुलचित होने नहीं दी है, ये सती है, मेरी मति सती है, ये मेरी कन्या मैंने 400 साल तक पाली है। अब मैं श्री कृष्ण आपको ये अर्पण करना चाहता हूं। क्या अर्पण कर रहे हैं श्री कृष्ण को भीष्म पितामह? अपनी मति, मति मीन बुद्धि। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मांगते क्या है? मैं अर्पित मनो बुद्धि, मुझे बुद्धि अर्पण करो। तो भीष्म पितामह ऐसा उदाहरण है जो अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये भगवान मांगते हैं और भीष्म दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अद्भुत उदाहरण है। अगर ये बुद्धि आज मैं आपको देता हूं, इसको आप स्वीकार कर लीजिए और फिर एकदम उनको वीर रस, ये क्षत्रिय है ना, वीर रस का ध्यान आता है। श्री कृष्ण घोड़ों के टापों से उड़ी हुई धूल, आपका परिश्रम से पसीने से घुंघराले बालों के ऊपर जमी हुई धूल, और मेरे को तीर चलाते हुए आपने देखा कि मैं अर्जुन को घायल कर रहा हूं, तो आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ दिया, मेरे वचन की रक्षा की और गिरे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया, चक्कर पानी बन रहे, रथांग पानी बने, रथांग पानी का मतलब रथ के पहिये को हाथ में उठा लिया और मेरे ऊपर ऐसे झपके जैसे शेर हाथी के ऊपर झपकता है, और तब आपका ये ओतरी भी नीचे गिर गए। तो ये आपका रूप मैं अब हूं, ऐसा रूप आपका तो वैसे वृंदावन में गोपियां देखना चाहती थी। शाम को गाय के खुर से उड़ी हुई धूली दूर से दिखाई देती थी, उनके पीछे कृष्ण, आप उस धूली से धूसरित घुंघरालू बालों से ब्रज में प्रवेश करते थे। तो ये तो गोपियों को दर्शन होता था, वो तो माधुर्य रस में थी और मैं यहाँ आपके वीर रस का रस आस्वादन कर रहा हूं। बड़ा अद्भुत प्रार्थना करते हैं कि मैं, और आपको ये मैं बता दूं कि जितना लाभ हमको मिला महाभारत युद्ध में, कि हमने तो आपका सामने से दर्शन किया, ये बेचारी पांडव सेना तो आपके पीछे खड़ी थी, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, हम तो आपका दर्शन करके सौभाग्य हमारा, और जितने हमारी तरफ से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वो सब तो आपका दर्शन करके भगवत धाम चले गए, उनका जो सदगति हो गई, कितना क्या कितनों के ऊपर आपने कृपा की है। आपने कोई पक्षपात नहीं किया, न पांडवों के पक्ष में थे न कौरवों के पक्ष में थे, आपने तो दोनों का ही उद्धार किया। और फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि अब गोपियों का ध्यान करते हैं और गोपियों की आशीर्वाद लेते हैं कि वो गोपियां आपसे बिछड़ी तब आपका अभिनय कर रही थी। एक गोपी कह रही थी अपनी साड़ी ऐसी करके कि आ जाओ मैंने गोवर्धन उठा लिया है, आपको बरसात नहीं भिगाएगी, और दूसरी गोपियां उसके नीचे, इतना गोपियां तन्मय आप में हो गई, ये आपकी लीला का श्रवण वर्णन हमारे जीवन। और सिर्फ भीष्म पितामह ने हमें आने के ऊपर आंखें बंद कर दी, पहले खुली आंखों से भगवान का दर्शन किया और आंखें बंद कर दी। उस वक्त पक्षियों ने चिड़चिड़ाना बंद कर दिया, देवताओं में फूलों की वर्षा की और भीष्म पितामह सदगति हुई भगवत धाम जाने के लिए तैयार हुए, ये नवे अध्याय का वर्णन है। तो यहाँ हम आपको बताते ये हैं कि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भगवत धाम गए। ये एक ही उदाहरण है कि भगवान सामने खड़े हो कोई दुनिया से जाए। और चेतना महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर ऐसे उदाहरण है जो चौपाओ पकड़ के महाप्रभु को कहते हैं अब मैं जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरा रहना ठीक नहीं है, और उससे भी ज्यादा मैं जानता हूँ कि अब आप अपनी लीला समाप्त करके जाएंगे और आपके जाने के बाद मैं आपके गृह में रह नहीं सकता, इसलिए बस अब मैं आपको देख रहा हूँ और देखते देखते चरण आपके पकड़े मेरे प्राण निकल जाए। ये दूसरा उदाहरण है। जिन्होंने जाना तो सबको दुनिया से, मरना तो है एक दिन, लेकिन भगवान को देखते हुए जाने वाले बहुत बड़ा एक अद्भुत उदाहरण है। और उस वक्त भीष्म पितामह जी यहाँ सदगति हुई। ये क्या बताने के लिए हुई कि महाराज परीक्षित जो भागवत की कथा सुनने का प्रथम अधिकारी है, श्रवण का आचार्य है, श्रवण भक्ति का आचार्य है, उसके पितृ कुल में भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति था जिसके लिए भगवान साक्षात खड़े हो गए। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र के सदगति का वर्णन आता है, जो सब उसको कहते हैं कि दूसरे का राष्ट्र को हड़प करके उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र। धृत का मतलब हड़प कर लेना। लेकिन उसका भी सदगति हुई, विदुर ने उसको ले जाकर हरिद्वार में गंगा के तट के गंधारी के साथ सदगति योग के माध्यम से जाए। तो उसके कुल में, परिषद के कुल में सबकी सदगति हुई है। और फिर महाराज युधिष्ठिर के राज का वर्णन आता है कि कितना अद्भुत महाराज युधिष्ठिर का राज था। समय के ऊपर बरसात पड़ती थी, पहाड़ों से सब धातु मिलते थे, समुद्र हीरे मोती देता था, महाराज के राज में सब सुखी थे, इसका वर्णन आता है। और फिर वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे, तो कैसे पांडव निहार का से भगवान की विदाई करते हैं, और जहां जहां से भगवान जाते हैं वहां कैसे लोग उनका स्वागत करते हैं। पांचाल देश से गए, फिर मरुभूमि से गए राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश के कुछ टुकड़े से गुजरे, फिर स्वराष्ट्र से गुजरात से गुजरे, और जब द्वारका का नाम है कुश स्थली, पुराना द्वारका का नाम है कुश स्थली। और ये कुश स्थली इसका एक दूसरा नाम भी है, महाराज सूर्यवंशी शरयाति के पुत्र ने तपस्या करके 100 योजन वैकुंठ से धरती के ऊपर उतारा था, तो उनके नाम से इसका नाम भागवत में लिखा है कुशस्थली, और द्वारावती उसका नाम है, और एक तीसरा नाम है अभी आएगा जबान फिर आपको बताएंगे। तो द्वारका के सीमा के ऊपर पहुंचते ही, द्वारका शब्द का अर्थ है द्वार कहाँ है, और ये नाम इस कुश स्थली को गोपियों ने दिया। भगवान रात रात में द्वार मथुरा से द्वारका चले गए। अब गोपियां मथुरा के नजदीक में थी, द्वारका तो 1500 किलोमीटर दूर हो गया, तो योग माया द्वारका को रात को लाके एक महल में बिठा दिया। सुबह उठते ही गोपियां कहती हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। तो उस जगह अनर्थ देश इसका पुराना नाम है, भागवत में है अनर्थ देश। अनर्थ महाराज शरयाति के बेटे का नाम है। महाराज शरयाति ने कहा कि ये पृथ्वी मेरा राज है, बेटे ने कहा भगवान का राज है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, बोला फिर जाके भगवान से जमीन लो, राज करो, मेरे राज में मत रहो। तो अनर्थ महाराज ने भगवान की तपस्या की समुद्र के किनारे, भगवान वैकुंठनाथ ने कहा धरती तो इतनी है, बोला महाराज आपकी जो इच्छा। तब 100 योजन वैकुंठ से उतार कर 800 किलोमीटर द्वारका से लेके प्रभास क्षेत्र से लेके ये पूरा क्षेत्र जो है ये वैकुंठ से उतरी हुई धरती है 800 किलोमीटर की, अनर्थ देश इसका नाम था। तो वहां तो गोपियों ने इसका नाम रख दिया द्वारका, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। फिर गोपियां वहां से निकली, भगवान का अभिषेक किया श्री कृष्ण का, और जो भगवान का अभिषेक किया तो वहां जो गोपियों ने स्नान किया भगवान ने किया, तो उनके अंग के ऊपर लगा हुआ जो चंदन आदि खुशबू थी वो सारी उस पानी में इकट्ठी हुई, उस तालाब का नाम हुआ गोपी तालाब। और उस तालाब के नीचे जो मिट्टी बैठ गई वो असल में गोपी, वो चंदन था भगवान को और गोपियों को लगा, उसका नाम हुआ गोपी चंदन, जिसका तिलक धारण करते हैं। तो ये उस समय इनका नाम ऐसे द्वारका हो गया था। तो यहाँ भगवान का द्वारका में स्वागत हुआ, सब लोगों के अंदर जैसे जैसे मुर्दे में जान आ जाती है, ऐसे भगवान बहुत समय, 4 महीने से ज्यादा रह गए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में, तो वापस स्वागत हुआ, बड़ा आनंद हुआ। यहाँ भगवान की विदाई हुई, वहाँ भगवान का स्वागत हुआ। और उसके बाद ये धृतराष्ट्र की सदगति होती है, इसके बाद परीक्षित के जन्म का प्रसंग आता है। परीक्षित के जन्म के समय पंडितों ने कहा कि ये बड़ा तेजस्वी बालक है, ये पूरे विश्व का सम्राट बनेगा, लेकिन इसके जीवन में एक ऐसी बात है कि जवानी में ऋषि का अपराध होगा इसको, लेकिन होगी सतगत बहुत बड़ी परिषद की महिमा है। परिषद का नाम असल में देवरथ का ना विष्णुराज, विष्णुराज परिषद का नाम है जन्म का। और सुखदेव महाराज को ब्रह्मराज कहते हैं, ब्रह्मराज विष्णुराज को भागवत सुना रहा है, लेकिन इसका नाम परीक्षा क्यों हो गया? क्योंकि जन्म लेने के बाद ये सब को ऐसे देख के परीक्षा लेता था कि किसने मेरी माँ के उदर में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, वो कौन था जिसने मेरे को ब्रह्मास्त्र से बचाया था, तो इसका नाम परीक्षा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण एक महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए हुए थे, अश्वमेध यज्ञ में, राजकीय यज्ञ में। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, ये छोटा बालक 3 साल का 4 साल का परीक्षित चलता हुआ है, तो कृष्ण के सामने खड़ा हो गया और कहीं और नजर नहीं हटा रहा है। तो व्यास देव ने उठ के कहा, गोविंद कृष्ण ये आपको पहचान गया, ये आपको ही ढूंढ रहा था कि किसने मेरी रक्षा की है, लेकिन अभी इसको एक डाउट है, संशय है। उस वक्त आप हृदय से गए थे तो वहां तो चतुर्भुज रूप में होते हैं, 4 हाथ आपके होते हैं, अभी आपके 2 हाथ हैं, इसका संशय दूर करने के लिए आप 4 हाथ प्रकट करें। तो भगवान उस वक्त 4 हाथ प्रकट किए और परीक्षित ने भगवान का जी भर के दर्शन किया और इसलिए उसका नाम परीक्षित प्रसिद्ध हो गया, जबकि जन्म का नाम विष्णुराज है कि विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा हुई है। तो यहां यहाँ भगवान यहाँ परीक्षित के जन्म का वर्णन है और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने का वर्णन है। 33 साल महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम जाने लगे। अर्जुन उस समय गया हुआ था द्वारका और जाते समय भगवान ने अर्जुन के ऊपर एक काम रखा था, जवाबदारी दायित्व रखा था कि सारी मेरी रानियों और बच्चों को जो बचे हुए हैं द्वारका से लेके हस्तिनापुर ले जाना, मेरे जाते ही समुद्र द्वारका को वापस ले लेगा, मैंने समुद्र से द्वारका को लिया था, ये तो वापस समुद्र में चली जाएगी, जब तक मैं हूं तब तक रहेगी। तो अर्जुन उन सबको लेके वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ गांव के गोपू ने उनसे युद्ध किया और अर्जुन उनसे हार गया। ऐसे अन्य पुराणों में इसका वर्णन है कि भगवान ही उस रूप में आके अपनी रानियों को ले जा रहे थे, लेकिन अर्जुन को एक ऐसा एक भक्त ने कुछ छोटा सा शराब दिया था कि तुम्हारा गांधी तेरे हाथ में होगा लेकिन एक समय तुम हार जाओगे। तो वो कथा अपने आप में एक जगह पे बहुत अद्भुत कथा है, लेकिन कहीं बीच में समय मिला तो करेंगे। तो अर्जुन जब वापस लौट के आया तो महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन का चेहरा देख के बोला, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया? सब द्वारका में शांति तो है, सब परिवार सुखी है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? किसी को तुम दान नहीं दिए, किसी ने मांगा, क्षत्रिय हो, तुमने किसी की रक्षा नहीं की, किसी स्त्री का तुम रक्षा नहीं कर पाए हो, किसी भोजन खाने वाले को भोजन नहीं खिला सके हो, कोई कारण बताए दुख के, और फिर पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्रिय भगवान श्री कृष्ण जो तुम्हारा जीवन था वो तुमसे अलग हो गया। तब अर्जुन के आंखों से आंसू आए और बहुत बड़े दुख से कहने लगा, वो श्री कृष्ण जिसके कारण मैं वीरता से पूरे महाभारत युद्ध का विजयी हुआ, उसकी कृपा से मैं देवताओं को प्रसन्न कर सका, शंकर जी से पशुपा तक, वो आज मेरा कृष्ण मुझसे अलग हो गया है। और अर्जुन जैसे ये कहा मुझसे अलग हो गया है, स्वधाम चला गया है, महाराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा। इसको बोलते हैं वीर संन्यास। उन्होंने वीर संन्यास लिया कि ये राज तो कृष्ण ने दिया था, कृष्ण नहीं है तो हम राज नहीं करेंगे। उस वक्त भीम ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा कि भाई अगर आप राज नहीं करेंगे तो हम आपकी जगह पे बैठ के राज नहीं करेंगे। नकुल सहदेव ने मुकुट नीचे रखा। अर्जुन तो पहले से ही भगवान के जाने से के बाद मुकुट को नीचे रख चुके थे। पांचों भाइयों ने कहा हम राज नहीं करेंगे। ये समाचार जब वो अंदर पहुंचा और कुंती महारानी ने कहा अर्जुन आज मेरे चरण स्पर्श करने नहीं आया, जब भी कहीं से आता है तो पहले माँ को प्रणाम करता है, अच्छा भानु क्यों है? बोला वो तो द्वारका का दुखद समाचार सुना रहा है। क्या हुआ? श्री कृष्ण स्वधाम चले गए। इतना सुना और कुंती के प्राण निकल गए। ये एक ऐसी भक्त है, दो ऐसे भक्त हैं, एक महाराज दशरथ ऐसे भक्त है, राम के न लौटने का सुना तो प्राण निकल गए, मदगत प्राणा, अगर मैं निकल जाऊं उनके जीवन से तो वो जीना नहीं रहना चाहते। और दूसरी ये महारानी कुंती ऐसी भक्त है जिसने जैसे सुना भगवान के जाने का प्राण निकल गए। एक तरफ माता की अर्थी उठ रही है और एक तरफ ये पांचों भाई कहते हम राज नहीं करेंगे, राज तो कृष्ण ने दिया था, अब कृष्ण नहीं तो राज नहीं करेंगे। तब इस छोटे परिषद को महाराज बनाने का प्रस्ताव आया है, पर परिषद अभी छोटा नौजवानी था, उसने कहा आप सब मुझे ऐसे, अब हम जाएंगे, ये तो पांडव तो सर्व को आरोहण करने के लिए रवाना हो गए और परिषद राजा बन गए। तो फिर परिषद के यहाँ राजकाल का वर्णन है कि परिषद ऐसा अद्भुत व्यक्ति है जिसने जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया। जैसे दर्शन हम सब भगवान का जन्म से पहले करते हैं, ये तीसरे स्कंद भागवत में आता है, गर्भ में बच्चे को भगवान अंगूठे जितनी, अंगुली से अंगूठे जितना इस साइज का सामने आके खड़ा होता है और 100 जन्म पहले के दिखा के कहता है कि ये सब तुम्हारे पहले जन्म गुजरे हैं। तब वो जीव कहता है भगवान अब मैं आपको याद करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, मुझे यहाँ से निकालो, इस अंधकार में मैं नहीं रहना चाहता। लेकिन जैसे उसका जन्म होता है तो कोई उसको अपना बेटा कहता है, कोई पोता कहता है, और इतना प्रेम ऐसा मोह का जाल बाहर बना हुआ है, वो भगवान के किए हुए वचन को भूल जाता है, वो देखे हुए भगवान का उसको विस्मृति हो जाती है। लेकिन परीक्षक ऐसा अद्भुत था कि उसको वो भूला ही नहीं, वो उसको ऐसे ही का ऐसे याद था। बस ये अंतर है भगवान के भक्त में, भक्त किए हुए वायदे को निभाता है और संसारी लोग सब वायदे भुला देते हैं। और दूसरी परीक्षा की महानता ये है कि काल के ऊपर विजय प्राप्त की। कलयुग, ये युग तो कलयुग का है, परीक्षा की दिग्ध विजय कर रहा था। दिग्ध विजय का मतलब है दसों दिशाओं में। दशरथ भगवान रामचंद्र के पिता का नाम है, उसका एक अर्थ है जिसका रथ 10 दिशाओं में चले। तो आकाश मार्ग में भी इसका रथ जाता था, स्वर्गलोक में जाके युद्ध करते थे, पाताल में भी रथ जा सकता था, हर दिशा में जिसका रथ चले वो 10 दिशाओं में जो विजय प्राप्त करे उसको कहते हैं दिग्ध विजय। तो महाराज दिग्ध विजय के गए तो जगह जगह के लोग कहते थे पांडव कितने महान थे, भगवान श्री कृष्ण उसके रक्षक थे, वो कितना धर्म था। तो जहां जहां उनको पांडवों की महिमा सुनने को मिले तो परीक्षक बड़ा खुश हो जाए, बड़ी शिक्षा मिलती है। अगर हमारे दादा परदादा कोई अच्छा काम कर जाते हैं, कोई किसी ने बड़ा मंदिर बना दिया, किसी ने कोई बड़ा धर्मशाला बना दी तो पोते देखते हैं कि हमारे बड़े कितना अच्छा काम कर गए हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। परीक्षक को अपने पूर्वजों के किए हुए अच्छे कामों का जगह जगह दर्शन हुआ और बड़ा दिल खुश हो गया। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ ऐसा इस दुनिया में करके जाना चाहिए कि हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को उसके ऊपर गौरव हो। अगर आप अपनी संस्कृति को देखेंगे तो बहुत अद्भुत चीजें वो बना के गए हैं। किसी जितने भी बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएं बने हुई है हमारे बुजुर्गों ने, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, अभी तक कई हजारों लोग रोज खा रहे हैं, वो सब व्यवस्था करके गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, ये पीछे रह जाता है, बाकी सब कुछ यही रह जाए, बाकी तो सब समाप्त हो जाएगा। हाथ से किया हुआ सत्कर्म वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए स्वाभिमान का भाव बहुत बड़ा कारण बनेगा। और फिर एक जगह परीक्षित महाराज को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, एक बैल एक टांग के ऊपर खड़ा है, तीन टांग टूटी हुई है, और एक गाय जो बहुत दुबली पतली आंखों से आंसू बहा रही है और दोनों आपस में कुछ अपनी भाषा में बोल रहे हैं और परीक्षित महाराज उनकी भाषा को समझ गए। ये परीक्षित महाराज की तीसरी विशेषता है, काल के ऊपर विजय प्राप्त की, जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया और धर्म के रूप में बैल जो खड़ा था और पृथ्वी के रूप में जो गाय खड़ी थी उनकी भाषा को समझ गए। और वो दुखी थी, एक दूसरे को बता रहे थे कि पृथ्वी को धर्म पूछ रहा था, तुम रो क्यों रही हो, क्या लोग तुम्हारे ऊपर धर्म का पालन नहीं करते। और पृथ्वी कहती तुम धर्म तीन टांगों पे खड़े हो, तुम्हारी एक टांग पे खड़े हो, तीन टांगें कहां चली गई, तुम्हारा ये हाल किसने किया है, ये सुन ही रहा था। महाराज कहते हुए उनके पीछे एक आदमी राजा जैसा वेश धारण किया है लेकिन हाथ में डंडा लिया है और बैल को मार रहा है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा कि तुम दुष्ट, इस पांडु कुल के राज में जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अभी तक दिख रहे हैं तुम अधर्म का कार्य करके और धर्म रूपी इस वृषभ की और गौ माता के ऊपर हाथ उठा रहे हो, गाय के तीन धर्म धरती के तीन रूप हैं। आदि भौतिक रूप में धरती पर ये पत्थर है, जबल है, पहाड़ है, नदियां हैं, लेकिन देवी के रूप में पृथ्वी गाय का रूप दे देती है जो सैन शिक्षा की मूर्ति है, और आध्यात्मिक रूप में भू देवी भगवान विष्णु की पत्नी कहलाती है, श्री देवी और भू देवी। तो ये भगवान की पत्नी है, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है और लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है। मूर्खता दुनिया की ही है, सारे दुनिया इन दोनों के पति बनना चाहते हैं, एक भूमिपति बनना चाहते हैं और कुछ लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। तब ये दोनों हंसती है कि मूर्ख से पहले कितने राजा महाराजा आए मर गए, ये तो केवल भगवान की है, इसके बालक बनोगे तो सुखी रहोगे, इसके मालिक बनोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। ये तो भगवान की पत्नी है दोनों, उन्हीं की धरती किसकी कभी आज तक बनी नहीं, ये तो जिसकी है उसी की रहेगी, तो भगवान पत्नी पत्नी तो धर्म। और उस वक्त परीक्षित महाराज ने जो निकाला तो वो भय एक राजा का वेश उतार के हमें कल जो वो महाराज मेरा समय आ गया है, अब तो मैं ही राज करूंगा और मेरे राज्य नहीं रह सकते। तो परीक्षित महाराज चार स्थान उस वक्त कलयुग को दिए जहाँ नशा होता है सुरापान, वहां जाके तुम निवास करो। तो महाराज जहाँ नशे का तो आपके राज में है नहीं, कहाँ रहूंगा, जगह नहीं मिलेगी। तो बोला फिर जहाँ पर स्त्री पर पुरुष का संग होता है, विचार होता है, प्रासिकीन होता है, वहां जाके रहो। बोला महाराज ये धार्मिक राज है, इसमें ऐसा नहीं जगह मिलेगी, वहां कैसे जाऊं। तो बोला फिर ऐसे करो जहाँ धर्म के विरुद्ध यज्ञ के अलावा जहाँ बलि दी जाती है, पशु की हत्या की जाती है, केवल केवल जीवा के सुख के लिए ऐसे स्थान के ऊपर जाते रहो, कसाई खाने। बोला महाराज ऐसा तो नहीं होता है आपके राज में। तो बोला जहाँ जुआ होती है वहां जाते रहो, महाराज ये भी स्थान नहीं है। धर्म के चार स्तर चार स्तंभ है जिन स्तंभों के ऊपर धर्म खड़ा है, सत्य दया तपस्या पवित्रता, सत्य दया तपस्या पवित्रता। तपस्या जाती है नशा करने से, दया जाती है पशु हत्या से, पवित्रता जाती है पर स्त्री पर पुरुष संग करने से, और सत्य जाता है धुआ करने से। तो इस चार धर्म को नाश करने वाले कार्य हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों को मालूम है कि भक्ति शुरू करते हैं तो कहते हैं कि एक तो भौतिक बीमारी के रोग से निवृत्ति के लिए दवाई तो है भगवान का नाम, नाम औषधि है, नाम भगवान का दवाई है, भगवान है साक्षात लेकिन फिर भी उसको औषधि कहते हैं। लेकिन परहेज चार चीजों से करनी पड़ेगी नहीं तो बीमारी पड़ेगी। तो ये चार चीजें यहाँ भागवत से दी गई है कलयुग के प्रभाव को हटाने के लिए। पशु हत्या नहीं करनी है, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है, पर विवाह के बाहर विचार नहीं, विचार का विचार ही नहीं करना है। तो ये जो चार नियम है ये धर्म के स्तंभों की रक्षा है। कलयुग कहता ये भी हमारा यहाँ का नहीं है, तब का स्वर्ण में निवास करो, सोने में, धन में, महाराज ये जगह मेरे को मिल जाएगी क्योंकि सभी धन इकट्ठा करने में लगे, ये मेरे ग्राहक मुझे हाथ आ जाएंगे। और फिर यहाँ वर्णन ऐसे आता है, एक वर्णन सुनते हैं आप, पहले वो सुनाओ जो ठीक नहीं है। वो वर्णन ये है कि एक दिन महाराज परीक्षित विजय ने प्राप्त की हुए पूर्वजों के लिए जरासंध महाराज का मुकुट पहन के चले गए मिर्जा करने के लिए। रास्ते में सारे संगत से अलग हो गए, सारे साथी बिछड़ गए और प्यास लगी और सन्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि समाधि में बैठे हुए देखे तो क्रोध आ गया कि ऋषि ने राजा का सत्कार नहीं किया, मरा हुआ सर्प उठाया तीर की नोक के ऊपर बाण की और गले में डाल दी और वहां से चले गए। तो कुछ कथाकार कहते हैं कि माँ जो सोने का मुकुट था महाराज परीक्षित का उसने कलयुग में प्रवेश किया, ये कथाकार कहते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं ये सत्य नहीं है, क्यों कि जिसकी भगवान ने रक्षा की उसके और जिस कलयुग ने उनका शरण लिया वो उनके सर के ऊपर नहीं रह सकता। तो कलयुग ने किसको अपना शिकार बनाया, तब कहते हैं ऋषि तो समाधि में था, कुछ छोटे बच्चे खड़े थे वहां कच्चे, वो भागते हुए सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास गए जो स्नान में नदी में स्नान कर रहा था। वो श्रृंगी, महाराज आपके पिता का अपमान करके मरा हुआ सर गले में डाल गए, कलयुग ने इस कच्चे ब्राह्मण के बच्चे को देखा कि है ब्राह्मण का बच्चा लेकिन अभी कच्चा है, कलयुग ब्राह्मण के बच्चे की बुद्धि में प्रवेश किया और बच्चे ने ऐसे जल उठाया बगैर सोचे समझे और कहा राजा जिनको हम राज अभिषेक करते हैं तब राज सिंहासन पे बैठते हैं, आज हम ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, 7 दिन के बाद तक्षक का समय काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये कलयुग ने पहले एक धार्मिक राजा के ऊपर एक कच्चे ब्राह्मण से शाप दिलाया। तो कलयुग ने पहला शिकार असल में बच्चे ब्राह्मण को कायम किया। और फिर तब क्या हुआ, आगे चल के भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं क्षत्रिय ब्राह्मणों से अलग हो गए, फिर आगे चल के क्षत्रियों ने अपराध किया वैश्यों से तो जैन धर्म अलग हो गया। ऐसे एक एक टुकड़े कैसे हुए हैं कलयुग के प्रभाव से, ये तो एक अपने आप में इतिहास है, उसको हाथ न लगाकर यहाँ उस बालक के ऊपर कलयुग ने अपना प्रभाव डाला। महाराज परीक्षित लौटते हुए कहते हैं मेरे को क्या हो गया, मैंने अपमान क्यों किया संत का, अरे भगवान मुझे इसका दंड दे दीजिए, मैं ही भोग लू, नहीं तो ब्राह्मण का अपमान तो कुल नाश कर देगा, मेरे कारण कुल का नाश तो नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच के अपने राजमहल में प्रवेश किया, तब तक वहां सम्यक का बेटा रोता हुआ बाप के पास आके बैठा, बाप का समाधि खुला, बेटा रो क्यों रहे, कुछ हो गया, बोला नहीं आपके गले में सर्प, गले में कोई माला डाले या सर्प वाले साधु को क्या फर्क पड़ता, साधु तो मान अपमान से ऊपर होता है, उठा के नीचे डाल दिया, पिताजी किसने सर्प डाला उसको मैंने शराब दे दिया। तब ऋषि कहते हैं बेटा तुमने गलत काम किया, ऐसा धर्मात्मा राजा इस धरती के ऊपर फिर मिलेगा नहीं। तुम्हारे से गलती हो गई तो पिताजी ने अपने बेटे के इस कार्य का अनुमोदन नहीं किया, उसको सराहा नहीं, उसको बुरा कहा और एकदम फिर अपने एक शिष्य को कहा, बेटा तुम भागते हुए जाओ हस्तिनापुर में, महाराज परीक्षक को संदेश दो कि ना समझ बच्चे ने समीर की आंख को शराब दे दिया, आपकी सदगति हो ऐसा महाराज का आशीर्वाद है, आप अपना कोई साधन जुटा लीजिए। बच्चा भागता हुआ ऋषि कुमार दरवाजे पे आया, महाराज बाहर निकल के आए, ऋषि कुमार का स्वागत किया। ऋषि कुमार ने कहा, गुरु जी ने बोला मुझे शर्म आती है, मैं अपमान कैसे करके आया, हमारे कुल में कभी किसी ने ऐसे नहीं किया, क्यों ऐसे मुझसे हो गया। बोला नहीं, गुरु जी ने कहा आपकी सदगति हो, लेकिन 7 दिन में गुरु जी के बेटे ने आपको शराब दिया है, तक सांप काटे। परीक्षक वहीं दरवाजे पे खड़े थे, वहीं से कहा, मेरे बेटे जन्मेजय को राज दे दो। राज की ओर मुड़ के नहीं देखा और वहीं से चल गई गंगा के तट पे। बोला अब 7 ही दिन बचे हैं तो हरि कथा सुनेंगे, अब जी के राज करने की कोई इच्छा नहीं। यहाँ कुछ चीजें सीखने की और समझने की है। राजा परीक्षक को क्रोध आना नहीं चाहिए व्यास के कारण, और समय ऋषि का अपमान भी नहीं करना चाहिए, उसके बेटे को भी शराब नहीं देना चाहिए। तो ये सब क्यों हुआ? उसका एक ही उत्तर मिलता है कि ये भगवान की इच्छा थी। क्या भगवान की इच्छा थी? जैसे देवकी के 6 बेटे कंस क्यों मारे, क्योंकि कृष्ण का अवतार कैसे होगा जब तक वो मरेंगे नहीं, तो ऐसे ऐसी स्थिति नहीं होगी तो भागवत का अवतार कैसे होगा? भागवत का अवतार होना है जैसे देवकी और वसुदेव को कष्ट देखना है, क्योंकि कृष्ण का अवतार होना है, तो यहाँ भागवत के अवतार की तैयारी हो रही है और पक्ष परीक्षक को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। आज परीक्षक जैसे ही गंगा के तट के ऊपर आया है, वही समाचार जो भीष्म के प्रायण के समय हुआ था वही सब ऋषि आ गए। व्यासदेव आया, नारद आया और व्यासदेव के पिताजी पराशर भी आए और बाकी तो ऋषि 20-50 का नाम है, सब आके बैठे गंगा के तट पे। परीक्षक ने कहा, मैं तो अभी न जल पीऊंगा न अन्न खाऊंगा, अब अन्न जल का मैं परित्याग कर रहा हूं। अब मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि 7 दिन मेरे जीवन के बचे हैं, आप हरि कथा बताओ, नहीं तो बताओ क्या करना चाहिए। तो कुछ ऋषि कहने लगे तपस्या करनी चाहिए, कुछ यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए। ये चर्चा चल रही थी, इतनी देर में दूर से 16 साल का सांवला चमकीला लड़का, और लोग पहचान नहीं समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, कुछ बच्चे और लड़कियां उसके पीछे पत्थर फेंक रहे थे, वो दिखाई दिया और सारे ऋषि उठ के खड़े हो गए, व्यास और नारद को छोड़ के सब खड़े हो गए। महाराज परीक्षक ने उसके स्वागत किया, बच्चे भाग गए, पहचान नहीं पाए। ये सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं पहले स्कंद भागवत में, भागवत की कथा का भगवान की प्रेरणा से। ये सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? भागवत में लिखा है कि व्यासदेव ने भागवत को तैयार तो किया, लेकिन सिखाए किसको? तब उन्होंने विवाह करके पुत्र को शिष्य के रूप में प्रकट करना चाहा, लेकिन ये सुखदेव माता के गर्भ वाटिका के जन्म लेने को तैयार नहीं है। व्यास ने कहा, बेटा प्रकट हो जाओ। बोला नहीं, माया पकड़ने की संसार की। बोला नहीं पकड़ी। बोला माया आपके बस में है क्या? अब व्यास ने तो उत्तर नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका था, व्यासदेव श्री कृष्ण को बुला के लाए। श्री कृष्ण का सुखदेव आ जाओ बेटा। बोला माया, बोला मेरी माया तेरा कुछ नहीं करेगी। भगवान ने जब वचन दिया तब सुखदेव प्रकट हुआ, और प्रकट होते ही सुखदेव कोई संस्कार नहीं किया और वन में चला गया। पीछे व्यासदेव जा रहा है, व्यासदेव कह रहे बेटा रुको रुको, बच्चा जा रहा है। एक सरोवर में स्त्रियां नहा रही है और ये नगन अवस्था में दिगंबर वेश में जा रहा है सुखदेव। स्त्रियों ने उसको देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पीछे व्यास ने कपड़े पहने हुए जा रहा है, दादे के उम्र का, स्त्रियों ने कपड़ा ढक दिया। व्यासदेव ने कहा, ये मां बेटियों, मैं आपके दादा जितना हूं, ये मेरा बच्चा 16 साल का नौजवान है, वस्त्र भी नहीं पहना, उसको देख के आपको तो कुछ लज्जा नहीं आई? और मैं आपके पिता के दादे के समान हूं, मुझे देख के लज्जा क्यों आई? बोला उसको तो ये पता नहीं लगता है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, पहाड़ क्या है, पेड़ क्या है, उसको तो सब एक जैसे लगते हैं। उसका स्तर इतना ऊपर है कि स्त्री पुरुष के विचार से परे है कि हमको उसको देख के कोई मन में विचार नहीं आया, लेकिन आप ग्रस्त हैं, आपको स्त्री पुरुष के भेद का पता है, इसलिए मर्यादा का सम्मान हमने किया। तो ये सुखदेव इस स्तर, और फिर व्यासदेव क्या करता है, और जिस काम के लिए बच्चे को जन्म, बच्चे का मैं बच्चे को प्राप्त किया, वो सीखने के लिए वो तो आने लगा, तब कुछ अपने शिष्यों को कुछ श्लोक भागवत के व्यास कराए व्यासदेव। एक दिन घूमते घूमते तीसरे स्कंद का एक श्लोक है कि ये बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगाकर आई, कृष्ण को क्या स्तन पान कराया, विष को तो देखा नहीं, और स्तन पान को पीते ही इसको भाव माता की गति भेदी, धात्री गति भेदी, इतना बड़ा दयालु कौन हो सकता है, मारने वाले को माँ का स्थान दे। सुखदेव ब्रह्मानंद की समाधि को छोड़ के उनके पीछे भागा, ऐसा कौन है मारने वाले को भी माँ का स्थान दे दे। उन्होंने कहा गुरु जी को मालूम है, ये श्लोक तो गुरु जी ने सिखाया है। फिर सुखदेव वापस जाकर बैठ गया। दो सप्ताह के बाद घूमते हुए फिर एक और श्लोक गोपियों के जिनों व्यों गीत से, बांसुरी की महिमा के गीत से गा रहे थे, ब्रहाम नटवर बपु करणियों करणिका, श्री कृष्ण मोर पंख पहने हुए ग्वाल बाल वेश में कैसे वन में नृत्य करते हुए। सुखदेव को ब्रह्मानंद भूल गया, उनके पीछे भागा, कहा ऐसा कौन सुंदर है, बोला गुरु जी को मालूम है। और सुखदेव व्यासदेव के पास आया और 18,000 श्लोक भागवत के सीखा, और स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं ब्रह्मनिष्ठ था, मैं आनंद में था, लेकिन भगवान की लीलाओं ने मुझे अपनी ओर ऐसे खींच के आकर्षण कर लिया कि इसमें इतना आनंद है कि वो आनंद तो अब इसके सामने एक धूम बिंदु के बराबर बच गया। यहाँ पहला स्कंद समाप्ति को आता है। परीक्षित महाराज के कुल की महिमा और परीक्षित की अपनी महिमा, और वो भागवत सुनने तब परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, आप जैसा निर्मोही वैराग युक्त श्रोमणी संत किसी के घर में आ जाए या राजा के पास आए, ये तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो सकती है। और श्री कृष्ण क्योंकि हमारे दादा अर्जुन के बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने ही कृपा करके आपको भेजा होगा, और आप आए हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। और ये परीक्षित का प्रश्न इतना अद्भुत है, परीक्षित पहले प्रश्न के भाग में पूछते हैं कि सब लोगों का सब समय सब जगह कैसे भला हो ये बताइए। इसको कहते हैं वैष्णव, जो दूसरे के दुख को पहले देखता है कि मैं राजा हूं, मेरी प्रजा का उद्धार नहीं और मेरा अकेले का उद्धार हो जाए, ये मुझे पसंद नहीं। तो पहले क्वेश्चन के कब भाग में पूछते हैं कि सब लोगों का सब समय सब जगह उद्धार कैसे हो, और दूसरे भाग ख में पूछते हैं कि जिसका मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या आप मशवरा देंगे, परामर्श देंगे। यहाँ पहला स्कंद समाप्त होता है और दूसरे स्कंद में पहली बार सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। दूसरा स्कंद 10 अध्यायों का छोटा सा है, उसमें साधन क्या है भगवत प्राप्ति का, बोला श्रवण साधन है, सुनना साधन है, श्रवण भगवत प्राप्ति का साधन है, ये दूसरे स्कंद का विषय है। और श्रवण के 3 अंग होते हैं, सुनना, समझना और करना। और संस्कृत भाषा में कहते हैं श्रवण मनन निध्यासन। तो इन 3 अंगों के अंतर्गत 10 अध्याय है भागवत के, दूसरे अध्याय के श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। तो सुखदेव गोस्वामी पहले बोलते क्या है, आपका प्रश्न महाराज धन्य है, बड़े तो प्रश्न आपका महान प्रश्न, दूसरे के भले का मरते समय कौन सोच सकता है। सुखदेव महाराज को मंगलाचरण करना भूल गया, 5वें अध्याय में जाके मंगलाचरण करते हैं, 4 अध्याय तो बोलना क्यों कर दिया, वो इतना प्रश्न अच्छा था महाराज का कि उनको मंगलाचरण करना ही भूल गया। कहते हैं दुनिया के लोगों को सुबह कमाने का और शाम को भोग करने का इसके अलावा कोई टाइम ही नहीं बचता है, ये तो इसी में लगे हुए हैं, रात उनकी सोने में और भोग में जाती है, दिन कमाने में जाता है। कितना सारे शास्त्र पढ़े, कब ये पढ़ेंगे, तो पढ़ ही नहीं सकते। और तब सुखदेव गोस्वामी पहले भाग का उत्तर देते हैं, सब लोग सब समय सब जगह अपना कैसे हित कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, अपना परफेक्शन कैसे जीवन में ला सकते हैं, सिद्धि मंगल कैसे कर सकते हैं, तब कहते हैं तस्माव। उन सब के लिए उत्तर देते हुए तस्माद सर्व आत्मा ईश्वर हरि भगवान, चार नाम लेते हैं। सर्व आत्मा का अर्थ है जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है और जो हम सबको प्रेम करता है, उस भगवान का। वो भगवान का दूसरा काम क्या है? ईश्वर सबका नियंता है, सबको सबका को नैन में रखने वाला है। तीसरा हरि, जो भक्तों का दुख हर लेता है और प्रेम देके मन हर लेता है। और चौथा भगवान, जो परम पुरुष भगवान है। ये चार शब्द देकर फिर कहते हैं उसका श्रोतव्य, उसके बारे में सुनना चाहिए, कोई सुनाने वाला हो तो सुनना चाहिए। कीर्तव्यम, और कोई सुनने वाला है तो सुनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तीसरा है समर्थव्यम, अगर दोनों नहीं है तो पहले जो सुना है उसका स्मरण करना चाहिए। तीन शब्द कहे, सब लोग सब समय जहां भी हो जब भी हो अगर भगवान की कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें या स्मरण करें। जब इच्छति अभयम, अगर कोई भय से मुक्त होना चाहता है तो भय कौन सा? संसार में मृत्यु का सबसे बड़ा भय है। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसके लिए ये तीन साधन है, और सबसे मुख्य साधन है भगवान की कथा का श्रवण करना। ये मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय करणारविंद, अभय चरण, वो भगवान के चरण अभयदान देते हैं, भय से मुक्त कर देते। दुर्लभ मानव जन्म, ये दुर्लभ है मानव जन्म, सत्संग, और उसमें सत्संग मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सोने के ऊपर सुहागा है। ये तो अंगूठी में हीरा हो गया जीवन मानव का, और फिर कथा मिल जाए, भगवान का श्रवण, कथा का श्रवण मिल जाए तो बड़ी भाग्य की बात है। ये दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरवे भव सिंधु रे, भव सागर पार करने का ये बहुत उत्तम और सरल रास्ता है। और फिर तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज सात दिन बहुत बड़े होते हैं। खटवांग महाराज को एक घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो गई, आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं वो भागवत सुनाता हूँ जो मैंने पिताजी से सुनी है, जो परंपरा से आई है, जो भय को मुक्त करके भगवान की प्राप्ति कराने वाली, और मैं भागवत की कथा करने जा रहा हूँ। तो उस कथा करने क्यों करते हैं परीक्षित महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज के शब्दों के तहत पहले तो भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, पूरा विश्व भगवान का शरीर है। फिर भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में देखना चाहिए, और फिर आगे कहते हैं मन में कहते हैं भगवान के कितने अवतार होते हैं इस धरती के ऊपर, उन सब अवतारों की कथा को सुनना चाहिए। और फिर सृष्टि का वर्णन करते हैं, भगवान की सृष्टि कैसे हुई। एक दिन ब्रह्मा जी को उनका बेटा नारद पूछता है, पिताजी सृष्टि की पूरी दुनिया का बोला तो आपके हाथ में ऐसे जैसे आमले का फल पड़ा हो या अमरूद पड़ा हो, आपको इसके आप ही बनाने वाले हैं ना। नारद कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी कहता नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल के ऊपर मेरा जन्म हुआ, और मैं कुछ देखा भी नहीं, ऊपर गया नीचे गया, अंधकार में केवल दो शब्द सुने तपा, और मैंने 100 साल दिव्य तपस्या की, तब भगवान नारायण का दर्शन हुआ, भगवान नारायण ने मुझसे हाथ मिलाया, तब मैंने उनको प्रार्थना की कि मैं सृष्टि कैसे करूं, तब उन्होंने मेरे को 4 श्लोकों की गीता बताई। उस चतुर श्लोकी गीता से मैं भगवान का दर्शन कर सका, और भगवान की कृपा से मैं सृष्टि किया, अब मुझसे कोई गलती नहीं होती है क्योंकि मैं भगवान की आज्ञा का पालन करता हूँ। और फिर एक अध्याय में भागवत के 10 विषयों का वर्णन है कि भागवत या कोई भी पुराण, तब उसको पुराण कहते हैं जब उसके अंदर पहले सर्ग हो जो भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि होती है, फिर विसर्ग हो जो भगवान जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होती है, फिर तीसरा होता है स्थान, सृष्टि कहाँ होती है, तो सृष्टि होने के लिए कोई जगह भी चाहिए, भक्त भी चाहिए जहाँ सृष्टि हो, स्थान, और फिर है सृष्टि की जाए तो उसका पालन पोषण भी करना चाहिए, उसको कहते हैं पोषण। फिर पोषण करना है तो फिर ये आकर अलग अलग शरीर कैसे बनते हैं उसको कहते हैं ऊती, और उसके बाद मनवंतर, इसका शासन कैसे चलेगा, इसके ऊपर शासन चलना चाहिए। तो ये विषय है जिनका वर्णन है। और फिर है ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुननी चाहिए। और फिर है निरोध, संसार को भुला के भगवान को याद कैसे किया जाए। फिर है मुक्ति, कैसे संसार के बंधन के दुख से मुक्त हुआ जाए। फिर है आश्रय, किसका आश्रय लेना चाहिए। ये 10 विषय हैं और यहाँ दूसरा स्कंध समाप्त होता है। तीसरे स्कंध में विदुर का दर्शन पहले होता है। तो विदुर का जब दर्शन होता है तब एक बात को ध्यान दीजिए, भगवान समभाव है, सबसे बराबरी करते हैं। पांडवों को धर्मराज युधिष्ठिर दे दिया, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर। कौरवों को विदुर दे दिया, वो भी धर्मराज है। एक समय में धर्मराज के दो अवतार हैं, पांडवों के पास युधिष्ठिर है और कौरवों के पास विदुर है। विदुर भी धर्मराज का अवतार है। अब भगवान ने दोनों को धर्मराज दे दिया, पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का पालन किया, धर्म के ऊपर चले, तो भगवान ने पांडवों का रक्षा किया क्योंकि वो धर्म के ऊपर चले। कौरवों ने विदुर का अपमान किया, घर से निकाल दिया दुर्योधन ने, तो धर्म का अपमान किया तो उनका नाश हो गया। तो भगवान दोनों को बराबर का धर्म दिया, एक ने उसका मान किया, एक ने उसका अपमान किया। तो यहाँ वर्णन आता है कि विदुर ने अपना घर क्यों छोड़ा, वो तो धर्तराष्ट्र का भाई था, व्यास का बेटा है, विदुर व्यास पुत्र है, और धर्मराज का 100 साल के लिए उसको तलाक मिला था। और ये जब सीत अपनी छोड़ के आया यमराज की, तो अर्यमा जो पितरों का अधिपति है वो यमराज की कोष के ऊपर एधार से बिठाया गया है। और यहाँ 100 साल पूरे हो गए लेकिन कृष्ण की लीला चल रही थी, विदुर गया ने एक्सटेंशन लीव की एप्लीकेशन भेज दी कि यहाँ चलती रहे, मैं तो यही भगवान की लीला का सुख ले रहा हूँ। तो विदुर भी धर्मराज है, व्यास का बेटा है, और उसकी नीति इतनी प्रचलित है कि विदुर नीति आज भी राजनीति में विदुर नीति का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। और फिर हस्तिनापुर का चीफ मिनिस्टर था, ये प्रधानमंत्री था, राजा तो पांडु महाराज थे, तो ये उनका प्रधानमंत्री था। तो ऐसा ऐसे व्यक्ति ने घर क्यों छोड़ा, ये प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने। तो तीसरा स्कंध शुरू होता है। तीसरा और चौथा स्कंध ये दोनों गंगा जी के तट पे हरिद्वार में चर्चा हो रही है। इसमें सुनने वाला विदुर है और सुनाने वाले मैत्रेय जी हैं, मैत्रेय ऋषि। तो हम पहले 3 अध्यायों में विदुर का और उद्धव के मिलन का वर्णन है। तो विदुर कैसे हैं, बोला विदुर घर क्यों छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण जब संधिदूत बनके हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने भोजन के लिए बुलाया, भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्यागे, साथ विदुर घर आए, तो विदुर के घर में चले गए भोजन करने के लिए। ऐसा घर जिसमें भगवान जिन बुलाया है उसको क्यों विदुर ने छोड़ा, बोला भगवान के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने रात को विदुर को बुलाया और कहा विदुर ये कृष्ण को अपमानित करके हमने भेजा है, अब क्या करना चाहिए, राजनीति क्या कहती है। विदुर कहता है राजन भाईजन ब्रादर है, राजनीति कहती है कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, धर्म उनके पक्ष में है, आपका बेटा दुर्योधन काल का कलंक है कुल का, और एक उंगली खराब हो तो शरीर को बचाना है तो उंगली को काट देना चाहिए, एक आदमी परिवार में खराब हो तो परिवार की इज्जत के लिए एक आदमी को निकाल देना चाहिए, और एक गांव खराब हो तो देश को बचाना है तो गांव को निकाल देना चाहिए, आप दुर्योधन को छोड़ दो नहीं तो कुल नाश हो जाए। उस वक्त दुर्योधन अंदर प्रवेश किया शकुनी और करण और दुशासन के साथ, और उसने ये सुना और सुनते कहा काका विदुर तुम हमारे रिश्तेदार होते हो और खाते हमारा हो और गुण पांडवों के गाते हो, और कोई होता तो तेरा गला काट दिया जाता, लेकिन निकलो यहाँ से हमारे। और उस वक्त जितना से चुप रहा विदुर ने कहा ये अपमान भी भगवान को मिलाने का साधन हो गया, मैं राजनीति के इस गोरख चक्कर से निकल जाऊंगा और अपने कुल का संहार अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। विदुर बाहर निकला, अपना धनुष बाण बाहर रखा दरवाजे के ऊपर कि मैं पक्षपात, मैं अभी दल बदलने वाला नहीं हूँ, पांडवों की तरफ नहीं जाऊंगा। साधु बन के भ्रमण करके पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए आके बैठे हैं जमुना के किनारे वृंदावन में। उस वक्त उद्धव जी वहाँ आए, दोनों आपस में मिले हैं, दोनों भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उद्धव तो कहते हैं क्या हाल है द्वारका का, सब खुश हैं। उद्धव कहते हैं क्या पूछते हो, भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए। और उद्धव ऐसे भगवान की लीलाओं का वर्णन करके समाधि में चला गया। और जब उद्धव समाधि से निकला तब विदुर कहते हैं तो बताइए श्री कृष्ण ने क्या, जाने से पहले मुझे सामने बिठाकर उपदेश दिया भागवत का भगवान श्री कृष्ण ने। अब तो उद्धव क्या, अब तो विदुर कहता है तो मुझे वो बताओ भगवान ने आपको क्या उपदेश दिया। तब विदुर कहता है, तब उद्धव कहता है आप मुझसे बड़े हो मैं छोटा हूँ, ये मर्यादा नहीं है कि छोटा बड़े को उपदेश दे जनरली। और फिर मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, जब श्री कृष्ण मुझे भागवत बता रहे थे उस वक्त मैत्रेय ऋषि वहाँ आए थे और मेरे सामने मैत्रेय को श्री कृष्ण ने कहा ये कथा मैत्रेय आप विदुर को सुनाना। और भगवान ने अंत समय जाने से पहले विदुर आपका नाम लिया था। ये सुन के विदुर के आंखों से आंसू आने लगे कि भगवान ने मुझे याद किया था अंत समय में। और ये सुन के विदुर वहां से गंगा के तट यमुना के किनारे चलते हुए गंगा के किनारे आए और मैत्रेय जी के चरण में बैठकर और भगवान वो प्रश्न पूछने लगे कि दुनिया में लोग सब दुख ढूंढते हैं, दुख क्यों मिलता है, ढूंढते सब दुख है, सबको दुख मिलता है, ये आकर दुनिया संसार, दुनिया भगवान ने ये संसार बनाया ही क्यों है, ये संसार कैसे बना। तो ये तीन अध्यायों के बाद प्रश्न शुरू होता है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है और 33 अध्यायों में दो विभाग है, पांचवें चौथे अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक पहले सृष्टि कैसे होती है उसका वर्णन है, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की। और इसके अंदर वाराहदेव भगवान के अवतार का वर्णन है जो यज्ञ स्वरूप होता है और उसके अंदर से वेद मंत्र निकलते रहते हैं। और 20वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक देवहूति का, कर्दम मुनि का और कपिल देव का और कपिल उपदेश भगवान के अवतार का वर्णन है। यहाँ दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। ये भगवद गीता में लिखा है कि इस संसार में दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक देवताई गुणों से संपन्न, एक असुरी गुणों से संपन्न। तो पहले भाग में असुरी प्रकृति कैसे होती है उसका वर्णन है। तो कथा ऐसे शुरू होती है कि कश्यप जो ऋषि कश्यप है उसकी अन्य पत्नियों में दो मुख्य पत्नी है, एक दिव्य एक आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है जो सबको जोड़ के रखे और आदित्य के 12 पुत्र हैं, उनका नाम है आदित्य, वो सारे देवता हैं। उनमें से एक भगवान वामन देव है, सूर्य आदित्य पुत्र है। और दित्य का मतलब है जो टुकड़े टुकड़े कर दे, उसके पुत्र है असुर। असुर वो होते हैं जो इंद्रियों के भोग में लिप्त हो, वो असुर। तो ये असुरों की उत्पत्ति कैसे होती है ये वर्णन आता है। कथा ऐसे शुरू होती है कि कथा शुरू करने के लिए भागवत में या वर्ण ऐसे आता है ब्रह्मा जी ने तो भगवान का दर्शन किया, हाथ मिलाया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से कहा मुझे पुत्र पैदा हो जाए और 4 बच्चे पैदा हो गए, उनका नाम 4 कुमार होगा, सनक सनातन सुनंदन आदि। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम सृष्टि बढ़ाओ, भगवान हम सृष्टि नहीं बनाएंगे, हम साधु बन जाएंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, पहले पुत्र वो भी आज्ञा नहीं मानते हैं, क्रोध को रोका, रुका नहीं और यहाँ दोनों भ्रुवों के बीच से क्रोध लाल होकर निकला, एक बच्चा नीचे गिरा, तीसरा वो बिल्लू रंग का बच्चा रोने लगा, बोला मैं कौन हूँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ। बोला तुम रुद्र हो, रो रहे हो, तेरा नाम रुद्र है, तुम जाओ सृष्टि करो। तो रुद्र ने ऐसी सृष्टि करी, भूत पैदा किए, भूत पैदा किए, वो ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे और ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि बंद करो, तेरी सृष्टि की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करो प्रलय का काम करो, 11 रुद्राणी तेरी पत्नी हो जाएंगी, ये जब हम पढ़ते हैं तब हमको लगता है आजकल लोग कहते हैं कि तुम बच्चे मत पैदा करो, क्योंकि सारे वो ऐसे पैदा हो रहे हैं जो दुनिया में मुसीबत पैदा कर रहे हैं, इसलिए कम पैदा करो जरूरत तो तुम्हारे बच्चों की जरूरत नहीं, अच्छे हों तो बहुत ज्यादा जरूरी है और बेकार हो तो एक भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों को पुरुष के बाद ऋषि पैदा किए ब्रह्मा जी ने, ऋषि पैदा किए सप्त ऋषि चतवारो मन वसु ये सब पैदा हुए। देखा सृष्टि बढ़ने लगी तो अपने वाम भाग से एक पुरुष को पैदा किया, उसका नाम हो गया स्वयंभू मनु, वो बारह महाजन में एक महाजन है। और उल्टे हाथ से एक स्त्री पहली पैदा की धरती से, वो बड़ी कोमल शोभा की और सुंदर और धीरजवान थी, उसका नाम हो गया शतरूपा। ये पहला स्त्री और पुरुष का धरती के ऊपर ब्रह्मा जी के अंग से जन्म हुआ, इसलिए उनका कोई माता पिता नहीं, आयोजन नहीं दोनों से। तो इन दोनों को तो कहा कि आपको दोनों ने कहा पिताजी आ गया कीजिए क्या कीजिए, आप सृष्टि बढ़ाओ, अब तो विवाह करो और सृष्टि बढ़ाओ। तो ये दोनों अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए तैयार होंगे, इसकी कथा आए उसके पहले ये विभाग शुरू होता है। ब्रह्मा जी ने अपने चार बेटों को कहा सृष्टि नहीं बढ़ाते हो कोई बात नहीं, भगवान के धाम के पास रहते जाओ कि वैकुंठ में कभी भगवान विष्णु का दर्शन तो करके आना, तुम्हारे रहने का स्थान वैकुंठ के पास है। एक दिन ये चार मौज में वैकुंठ के दरवाजे में गए तो वहाँ छह दरवाजे पार किए, किसने रोका नहीं, बहुत सुंदर वैकुंठ का दर्शन था। सातवें दरवाजे के दो खड़े हुए जय और विजय, भगवान के निज पार्षद डंडे दे दिए, मेरा बच्चे कपड़े भी नहीं पहने कहाँ जा रहे। इन ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, बोला यहाँ भी कौन अंदर जाए कौन बाहर जाए इसका नियम होता है क्या, वैकुंठ में भी ऐसे होता है क्या। एक बार एक कथा करने वाला शरीर थोड़ा वैकुंठ का दरवाजा बंद मिला अंदर जाने नहीं दे, हमें कथा करता था थोड़ी देर के बाद एक बिखरे हुए बाल फटे हुए कपड़े आदमी आया, दरवाजा खोला अंदर चला गया, बोला ये क्यों इसको जाने दिया कौन था, बोला एक बहुत एक बस का ड्राइवर था, बोला बस का ड्राइवर वैकुंठ में जा सकता है कथा करने वाला नहीं जा सकता क्या, मैं नहीं आपका, बोला कथा सुनो तो नहीं लिखा क्या है, लिखा है कि वो बस का ड्राइवर इतना रफ बस चलाता था बद्रीनाथ के रूट से बहुत खतरनाक, और सब लोग रास्ते में राम 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 जपते थे चार घंटे, इसलिए इसने लाखों लोगों को भगवान का नाम जपाया, इसलिए इसको वैकुंठ के लाने का अधिकार है। बोला मेरे को क्यों नहीं, बोला महाराज तेरी कथा में आधे लोग सोते थे, तेरी कथा में लोग सो जाते थे इसलिए महाराज तुम्हारे दरवाजे खुलने में देर होगी, लेकिन कैसे भी कोई भगवान का नाम जपाएगा तो उसको तो प्रवेश मिल जाएगा। तो ये तो चार बच्चों के लिए दरवाजा खुला नहीं, इसने बोला जाओ जाओ असुर बन जाओ पृथ्वी के ऊपर तुम्हें जा रहने का अधिकार नहीं। भगवान वैकुंठ नाथ अंदर लक्ष्मी चरण दबा रही थी, गरुड़ पास में खड़ा था और खड़ाऊ लेके खड़ा था उनका सेवक, भगवान ने गरुड़ को देखा भागते हुए गेट के ऊपर आए और कहा ब्राह्मणों आप यहाँ आए मैंने स्वागत नहीं किया, आप मुझे क्षमा करना, आप वेद का वाक्य नहीं गाते तो ये लक्ष्मी थोड़ी मेरे को विवाह करके वर्ण करती, ये थोड़ी मेरी लोग पूजा करते, आप ब्राह्मणों के मुख से मेरी पूजा होती है, मैं आपके मुख से सारा कुछ स्वीकार करता हूँ, आपका मेरे इन सेवकों ने अपराध कर दिया है, इन सेवक का अपराध मालक का अपराध माना जाता है, इसलिए आपने अच्छा किया इनको दंड दे दिया, ये तो चले जाएंगे लेकिन ये मेरे सेवक हैं, लोग इनको वापस लेने के लिए तीन बार मैं ही जाऊंगा। ये छोटे से बच्चे भगवान के चरण कमलों में लगी हुई तुलसी और चंदन की सुगंध नाक में गई, सूंघने के बाद उनको अपमान भूल गया ब्रह्मानंद भूल गया, कहते भगवान नहीं कुछ भी नहीं किया इसको कुछ मत कहो, बड़ा आनंद आया वो तो भक्त बन गए, ये केवल भगवान के दर्शन और सुगंध को सूंघ के तुलसी की, लेकिन भगवान ने कहा नहीं ये तो अभी धरती के ऊपर जाएंगे। और फिर कथा आती है कि कश्यप भी अपने संध्या काल में शाम को यज्ञशाला में पूजा के लिए बैठे, उस वक्त उनकी पत्नी दिति काम से प्रभावित होकर उनको कहने लगी कि आप इस वक्त मेरे साथ ग्रस्त धर्म का पालन करो। कश्यप ने कहा सुनो, पहला तो ये स्थान सही धर्म का है, यज्ञशाला है, ये उचित नहीं है। नंबर दो, ये संध्या काल का समय है और मैं संध्या वंदन करने बैठा हूं, इसलिए ये अधर्म है। तीसरा, इस वक्त भगवान शंकर अपने भूत प्रेतों को लेकर भ्रमण करते हैं और जो इस वक्त में सहवास करते हैं उनके उदर में भूत प्रेत डाल देते हैं, उनको जोड़ी मिलती है। और चौथा, इस वक्त तुम्हारे ऊपर काम का इतना ज्यादा प्रभाव है कि इस वक्त तुम्हारे संतान कामी होगा, वो साधु के घर में अच्छा नहीं लगता है। और पांचवा, मैं पति मना कर रहा हूं, आप उसका उल्लंघन मत करो। पांच कारण बताए गए, लेकिन स्थिति नहीं मानी। काम का वेग इतना था, कश्यप ने भगवान की इच्छा समझी और वापस, जब कश्यप वापस आया पवित्र होकर अपने यज्ञ करने के लिए बैठा तो दित्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये पांच कारण है असुरी प्रवृत्ति के बच्चे पैदा करने के। समय का, संध्या काल का समय हो, बहुत बड़ा गलत समय है, आज्ञा पालन नहीं करे पति की, अपनी स्वेच्छा से काम वासनी बने, ये पांच कारण बताते हैं असुरी प्रकृति के बच्चों के पैदा होने के। और फिर दित्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो और गलती मान ले तो वो महान आदमी कहलाता है। तो कश्यप कहते हैं अब जो हो गया उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे उदर में जो वैकुंठ से पतित असुर हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को प्रवेश हो चुके हैं और इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। दो बार दित्ति कहती है अच्छा है, मेरे बच्चों का ब्राह्मण के शाप से तो मृत्यु नहीं होगी ना, भगवान आएंगे। शंकर जी को तो मैं मना दूंगी, वो मेरी बहन के पति हैं, वो तो मेरे को क्षमा कर देंगे, लेकिन आप क्षमा कर दो। तब कश्यप कहता है क्योंकि अब तुम अपनी गलती मानती हो तो तुम्हारे बेटे तो बहुत क्रूर होंगे, संसार को बड़ा सताएंगे, लेकिन तेरा पोता ऐसा महान भक्त होगा, प्रहलाद जी का नाम दुनिया में गाया जाए। तो दित्ति की गलती मानने से प्रहलाद का प्रकट होना, तो जीवन में गलती तो किससे नहीं होती है, लेकिन गलती मानने वाला महान होता है, उसके घर में उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे दो असुरों की उत्पत्ति का वर्णन आता है और फिर कथा ऐसे आती है कि जब तो ये हुआ असुरी प्रकृति हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को असुर कहते हैं। और उधर स्वयं मनु और शत्रुपा देवी प्रकृति हाथ जोड़ के कहते हैं पिताजी क्या करें, गजल का सृष्टि बढ़ाओ। तो मनु कहता सृष्टि कहाँ बढ़ाए, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो जल में लेके चले गए असुर। ब्रह्मा जी विचार करने लगे तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक मटर के दाने जैसा जीव नीचे गिरा, देखते देखते बड़ा होने लगा और सब ऋषि ने कहा पिताजी ये कौन है, तो पहचान लिया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया कि ये तो वाराहदेव है, ये तो पृथ्वी इनकी पत्नी है, वाराह की पत्नी पृथ्वी है और वाराह और पृथ्वी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, महासुर उसका नाम है, वो भोमासुर कहते हैं, तो भोमासुर ये पृथ्वी का पुत्र है। तो वाराह के किसी वक्त समुद्र के अंदर चले गए और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर उठाया और पृथ्वी को बाहर लाए, तब हिरण्यकश्यप जल में विहार कर रहे थे। उसने कहा वो वरुण देवता को कह रहे गए थे, वरुण को कहा आपसे युद्ध करो, देखो हमें युद्ध करने की इच्छा हो रही है। बोला नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें युद्ध करना है तो देखो विष्णु जा रहा है सामने और तुम विष्णु से युद्ध करो, तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगा, तुम्हें कब पता लगेगा ये। तब नारद सामने आया कहते हे कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप कहाँ जा रहे हैं। बोला विष्णु कहाँ है। बोला वो देखो वो धरती लेके जा रहा है वाराह के रूप में। अब तो वाराह देव को कहते रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो जंगली, रुक जाओ। वाराह देव ने सुना भी नहीं उसका, बोला जब तक पृथ्वी अपनी जगह पे नहीं छोड़ी जाएगी, काम पूरा नहीं किया जाए, तब ऐसे मूर्ख को मुंह देना ठीक नहीं है, पहले अपने काम को पूरा किया फिर मुड़ के देखा और कुत्ते की तरह तुम जंगल में भटकने वाले भूख रहे हो, तुम्हारा शिकार करना हमारा धर्म होता है। और फिर दोनों के बीच में बहुत घोर युद्ध होता है और उस युद्ध का बहुत बड़ा वर्णन है। वो ब्रह्मा जी के एक दिन तक युद्ध चला, शाम का सप्त समय जब होने लगा ब्रह्मा जी ने कहा इसकी असुर की शक्ति बढ़ जाएगी, आप कृपा करके अब इनसे खेलना बंद कीजिए और इसका उद्धार कीजिए। तब तो वाराज ने मुक्का ही दे मारा उसके गले के ऊपर, बीच में दोनों की गदाएं गिरती हैं। पहले तो वाराज की गदा गिर गई तो हिरणा कष्ट था, उठा लो गदा, उठा लिया। फिर वाराजर के हिरणा कष्ट की गदा गिर गई, वो उठा वो नहीं उठाऊंगा, भगवान की आगे नहीं पालन करनी, तो मुक्का मारा, यहाँ उधार हुआ। सबने वाराजर की प्रार्थना की, धरती आ गई। यहाँ उन्हीं अध्यायों में क्रिया प्रदान अवतार वारा देव का वर्णन और सृष्टि कैसे होती है, फिर मानव की सृष्टि कैसे बढ़ी। तो दोनों शक्तरूपा और मनु के दो पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत, तीन पुत्रियां हुई। तो तीसरी पुत्री देवहूति का वर्णन इसके बाद वाले अध्यायों में आता है कि देवहूति का विवाह किससे हुआ। तो यहाँ कथा ऐसे शुरू होती है कि ये मनु का वंश आगे कैसे बढ़ा। तब कहते कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग इस धरती में, जैसे जैसे जामवंत है वो भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, ये सब ब्रह्मा जी के साथ पैदा हुए हैं और अभी तक जीवित हैं। तो ये कश्यप कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी का सृष्टि बढ़ाओ, बोला सृष्टि बढ़ाने से पहले तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने के लिए सरस्वती के किनारे सिद्ध आश्रम बिंदु सरोवर जो इस वक्त गुजरात प्रांत में आता है, वो अपने अहमदाबाद और पालनपुर के बीच में है। 125 किलोमीटर अहमदाबाद से आएंगे पालनपुर के रोड में तो राइट साइड में सिद्ध आश्रम है और वहाँ बिंदु सरोवर है जहाँ ये कथा हुई है। तो वहाँ कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं और घोर 10,000 साल तक तपस्या की। तपस्या जब तक जीवन में नहीं तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी, जब तक तपस्या नहीं तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी, और तपस्या के बगैर ग्रह प्रवेश भी किया ग्रस्त में तो सुख नहीं मिलेगा। और भगवान सामने तपस्या कर्दम की तपस्या देख के भगवान गरुड़ के ऊपर प्रकट हो गए, कहते कर्दम की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई और आंसू से दो आंसू गए, उससे बिंदु सरोवर बना, वो बिंदु सरोवर आज भी वहां है। और फिर भगवान कहते कर्दम तेरे मन में विवाह करने की इच्छा है तो सुनो, आज के 5 दिन के बाद स्वयं मनु अपनी बेटी देवहूति को लेके आएंगे, जो आपके अनुकूल है, योग्य है, गुरु से मिलती है, उससे विवाह कर लेना। और तब कर्दम ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि क्या भगवान आपके मिलने के बाद में संसार की कोई चीज मांगना कितनी मूर्खता है, फिर भी हम दुनिया वाले आपको छोड़ के दुनिया मांगते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। भगवान का कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में मैं पुत्र के रूप में आऊंगा और समय आने के ऊपर तुम्हें त्याग और वैराग्य हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कर्दम अभी बैठे अपनी झोपड़ी में कक्ष घास की, स्वयं मनु जो राजा है पूरे इस ब्रह्मांड का, अपनी पत्नी शत्रुता को लेकर रथ के ऊपर चढ़के, अपनी बेटी देवहूति को लेके, अपने एक व्यक्ति के घर में जो जरूरी सामान है उतना सामान लेकर कर्दम के पास आए। कर्दम से प्रणाम किया, कर्दम ने उसका स्वागत किया और कर्दम को कहने लगे मुझे नाम मत कहना, ये मेरी बेटी आपके योग्य है, ये सदगुण संपन्न है और इसको आप पाणी ग्रहण करके स्वीकार कर लो। कर्दम ने कहा भगवान ने भी मुझे ऐसे कहा है। देवहूति को कर्दम जी ने स्वीकार कर लिया। इस विवाह के अंदर कार्ड भी नहीं छपे थे, कोई आदमी कोई ज्यादा बुला के दावा, कोई जरा पार्टी वार्टी का बेकार खर्चा मनु जी ने नहीं किया, तो बताया मानव को कि बेकार खर्चा ठीक नहीं है, लड़की को जो देना है सुख के लिए दे, और लड़का योग्य होना चाहिए, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास वो तपस्या का धन अगर है तो उसकी सिद्धि से वो सुखी लग सकता है, संसारी धन की जरूरत नहीं। ये पहली शादी इस धरती के ऊपर हुई है, इसका ये समाचार है। और शादी के बाद भी कर्दम तपस्या में लगे रहे और देवहूति उनकी सेवा में लगे रहे। एक दिन कर्दम कहते हैं मनु पुत्री तुम राजा की बेटी हो, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ, तुम सूख गई हो, सेवा करके तुम्हारी सेवा को धन्य है, तुम्हारी इच्छा क्या है। गृहस्थ में मेरे पिताजी ने आपको मेरा पानी ग्रहण किया तो आपने गृह धर्म पालन करने का वचन दिया था, और ऐसे भी मुख से कहने में शर्मा रही थी, लेकिन समझ गए कर्दम, और कर्दम ने एक बहुत बड़ा सुंदर विमान बनाया अपनी योग शक्ति से, जो आकाश में उड़ सकता था, पानी में तैर सकता था और धरती पर चल सकता था। ऐसा अद्भुत उनकी अपने योग बल से विमान बन गया। देखा जयंती अभी तक प्रसन्न नहीं है, ये सूखी हुई अपना बिंदु सरोवर में नहा लो। बिंदु सरोवर में जैसे नहाने गई, अंदर विद्याधर कन्या आके उसका बहुत सुगंध तेल से बहुत शरीर का उपटन लगा के बाहर जैसे निकली, तो सोलह श्रृंगार करके नव युवती होकर निकली वहां से, और फिर विमान में उस विद्याधर कन्याओं के साथ नंदन कानन का स्वर्ग का ऐसे भ्रमण करके पूरा हाथ घुमाया अपने योग बल से, और नीचे उतरते ही कर्दम ने अपने तपस्या की सिद्धि के एक से नौ में अपने को विभाजित कर दिया, और देवती के घर में नौ कन्याओं का जन्म हुआ। उसमें से एक तो मुख्य अनुसुईया है, जो अत्रि की पत्नी हुई, और ये बहुत बड़ी पतिव्रता नारी में सर्वश्रेष्ठ नारी मानी जाती है। और फिर कदम कहने लगे, अब तो मैं जाऊंगा तपस्या करने के लिए, मुझे संसार में भोग नहीं करना। देवती कहती है, वो तो आप पति देव आपकी जैसी इच्छा हो, लेकिन ये कन्या कल शादी होगी, अपने पति के घर में चली जाएंगे, मेरी कौन देखभाल करेगा। वैसे भी आपने मेरे पिता को कहा था पुत्र जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, और याद आ गया कर्दम को कि भगवान ने भी मेरे घर में पुत्र होकर आने का वचन दिया है। तो फिर कर्दम रुक गए, समय आने के ऊपर सुनहरे बालों वाले देवहूति के घर में कपिल देव का प्रकट हुआ। देवहूति का अर्थ होता है जो भगवान को अपने पुत्र के रूप में आवाहन कर, देव आहुति, जो देव का आवाहन करे। कृष्ण आकर्षणी, जो कृष्ण को आकर्षण करे उसको देवहूति कहते हैं, जो भगवान को अपनी ओर खींच सकती है। तो ये देवहूति के घर में कपिल देव का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा कि ये आपके घर में भगवान का अवतार हुआ है। कर्दम ने अपने बेटे को प्रणाम किया, बोला आप अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाके तपस्या करूंगा, लेकिन मुझे शंका ये है कि आपकी माँ का देखभाल कौन करेगा। बोला पिताजी, जो ज्ञान मैंने आपको दिया मैं मेरी माँ को दूंगा, आप चिंता मत करो। कर्दम चले गए। समय आने के ऊपर भागवत में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपदेश है कपिल देव के द्वारा देवहूति को। पहले नंबर का है उद्धव को श्री कृष्ण का उपदेश ग्यारहवें स्कंद में। लेकिन एक स्त्री इतना बड़ा गंभीर विषय सांख्या दर्शन सुन रही है भगवान से, ये स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी स्वाभिमान की और सम्मान की बात है कि देवहूति सारी स्त्रियों का प्रतिनिधि करती हुई भगवान से साक्षात सांख्य भक्ति योग दर्शन का उपदेश। ये 10-12 अध्यायों में ये उपदेश है, इसको कहते हैं कपिल उपदेश, और माता को दिया है माता के उद्धार के लिए, इसलिए उस स्थान का नाम मात्र गया पड़ गया। और देवहूति को पहले तो भगवान का ध्यान करना सिखाया कपिल देव ने, फिर काल का रूप क्या है, भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति कितनी स्वतंत्र और शक्तिमान है कि कोई किसी भी नीच से नीच कुल में जन्म लिया हो लेकिन किसी भक्त का संग हो जाए तो वो महात्मा बन सकता है। ऐसा अद्भुत भक्ति का वर्णन कपिल, शिक्षा बड़ी अद्भुत है। समय का अभाव है, पढ़ेंगे तो बड़ा उसमें सुख मिलेगा। प्रभुपाद जी महाराज तो एक बार पूरा एक महीना केवल एक अध्याय 25वें के ऊपर प्रवचन किया कपिल शिक्षा देवहूति का, देवहूति के नाम से दो। ये प्रभुपाद जी भी बहुत बड़ी अद्भुत दुनिया को देना है। एक तो कुंती महारानी की प्रार्थना का पुस्तक अलग लिखा, एक महीना प्रवचन देके और एक महीना प्रवचन देके देवहूति की शिक्षा, कपिल की शिक्षा, दो पुस्तक अलग छपे हैं। देवहूति की पुस्तक शिक्षा का पुस्तक और कुंती, देखो दो माँ प्रभुपाद की भी अद्भुत ये दृष्टिकोण है, नारियों को सम्मान देने के लिए दो पुस्तक ऐसे अलग करके छापे, दोनों ही अलग हैं। और यहाँ तीसरे स्कंद को समाप्ति है, तो चौथा स्कंद शुरू होता है अत्रि और अनुसुईया तपस्या कर रहे हैं, उसकी कथा बहुत अद्भुत है। अपने को समय अभी 5 मिनट के अंदर विराम देना है। ध्यान कर रहे हैं अत्रि, हे भगवान, हे ईश्वर, हे जगत पालक, तीन एकदम उनके सामने आके ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आ गए, और वृषभ के ऊपर, नंदी के ऊपर शंकर जी आ गए, गरुड़ के ऊपर ब्रह्मा जी आ गए। अत्रि आंख खोल के कहा, मैंने भगवान ईश्वर को बुलाया, बोला हम तीनों ईश्वर हैं, हम तीनों इस जगत के ईश्वर हैं, जगदीश्वर तो हम तीनों हैं। प्रभुनाथ जो भी है मैं इसलिए प्रार्थना की कि मेरे आप मेरे घर में बच्ची बन जाओ तथा अस्तु। तो ये तीनों अनुसुईया और अत्रि के घर में विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, रुद्र के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ। तो चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय ये तीनों अत्रि के पुत्र हैं और चंद्रवंश अत्रि से चलता है क्योंकि चंद्र अत्रि का पुत्र है और चंद्रवंश यहां से चलेगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का आगे चल के अवतार होगा। तो अनुसुईया को सत्य पतिव्रता स्त्री कहते हैं। एक कथा अन्य पुराणों में आती है कि लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती तीनों अपने आप को पतिव्रता मानती थी और नारद ने जाके कहा पतिव्रता एक ही अनुसुईया है, तुम परीक्षा लेके देखो। तीनों ने अपने पत्नियों को भेजा कि जाओ अनुसुईया से भिक्षा लेके उसकी पतिव्रता को भंग करो। तीनों वहां चले गए, बोला भिक्षा दे दो मां, बोला भिक्षा लाके दे, बोला ऐसे नहीं दो निर्वस्त्र होके भिक्षा दो। अनुसुईया ने कहा जीता तुम छोटे बालक बन जाओ, मैं निस्तर निर्वस्त्र होकर तुम्हें भिक्षा दे देती हूँ। और तीनों छोटे बालक बन गए, माँ ने भिक्षा दी और तीनों को उधर बिठा दिया। अब तीनों पत्नियां परेशान हो गई, पति वापस नहीं आए। नारद को पूछा क्या हुआ, बोला पता नहीं उसके घर में बच्चे होके खेल रहे हैं। ये तीनों भागती वहां आई, बोला माता जी हमसे गलती हो गई, अनुसुईया हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम परीक्षा में फेल हो गई, हमारे पति को तो वापस दीजिए। बोला ये बच्चे हैं आपने ले जाओ वापस, दोष उसने नहीं देखा। तो ये तीन और यहां फिर इनके आगे वर्णन ऐसे आता है कि दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ प्रसूति के साथ, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुई। बोला क्यों संतान नहीं हुई, तो यहां चौथे स्तंभ के चार विभाग हैं। चार विभागों में सात अध्यायों में यज्ञ के रूप से धर्म का पालन किया जाता है। पांच अध्यायों में ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त है, राज चाहिए बड़ा, उसके लिए भगवान की पूजा करते हैं। 11 अध्यायों में सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले काम, सबकी कामना पूरी करने वाले प्रभु महाराज का वर्णन है और 8 अध्यायों में प्राचीन बहित ध्रुव वंश में और प्रचेता इनके मुक्ति का वर्णन है। तो चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसका यहाँ वर्णन है। तो इसको आज यहाँ विराम दें, कल शुरू करेंगे भगवान शंकर जी की शिक्षाएं, वो बहुत अद्भुत शिक्षाएं गृहस्थी के लिए, फिर इस कथा को आगे चलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो एक कागज के ऊपर लिख के भेजेंगे, हमारे पास आएगा तो हम उसका शास्त्र के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी शंका का समाधान। आप सब आज फिर बजा रहे हैं हम स्कान और आप सहयोगी भक्तों की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। अब आरती का भाग लेने के बाद प्रसाद लेके जाइए और कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।